Our Father and our God, thank you for the sweetness of worship together.
और हमारे बाप और हमारे खुदा, हम इस मौका के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने इस काबिल किया कि आज हम मिलकर तेरी हमदो सना कर सके।
As we sang praise and hallelujah to you this evening.
और आज हमने तेरे हजूर दुआएं मांगी और तेरे हजूर हालेलुया का नारा बुलंद किया।
May our looking to your word be equally blessing to us and to you.
और हम अब इस बात की उम्मीद रखते हैं कि वही जो बरकत हमने वर्शिप से हासिल की अब फिर से हासिल करने को है।
In Jesus' name, amen.
और हम ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं।
Amen.
Amen. Amen. In the book of Romans here, we have basically four parts.
और रोमियो की किताब में बुनियादी तौर पर हमारे पास चार हिस्से हैं रोमियो की किताब के।
The first part, chapters 1 to 4, outline for us the gospel.
और सबसे पहले जो हिस्सा है वो बाब 1 से लेके बाब 4 तक है और ये अंजील के मुतलक है।
We've gone through chapter 1 and we've seen where Paul begins to talk about sin so clearly.
और हम एक बाब से लेके चार बाब तक देखेंगे कि किस तरह पौलुस रसूल गुनाह के मुतलक हमें इन चार अबवाब में बताता है।
His argument about the gospel will go all the way from chapters 1 through the end of chapter 4.
और हम इस बाब के एक बाब से लेके चार बाब तक मुकम्मल देखेंगे कि किस तरह गुनाह को मुख्तलिफ अंदाज में हमारे सामने बताया गया है।
And basically conclude or finish with the start of chapter 5.
और हम जो है वो पांचवें बाब के साथ इसके नतीजे पर पहुंचेंगे और इसका खात्मा करेंगे।
In chapters 5 to 7, we'll see many major details about how God brings the gospel to us.
और पांचवें बाब से लेकर सातवें बाब तक बड़ा तफसीली मुतालिया हमें मिलता है कि किस तरह खुदा अपने कलाम को हम तक लेके आया।
How Jesus represents a new humanity and unites us to God.
और फिर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो किस तरीके से नए तरीके से हमें अपने साथ जोड़ता है और हमारा तल्लक जो है वो किस तरीके से नया करता है।
And how we are brought near through the cross.
और फिर हम ये जानते हैं कि किस तरीके से हम सलीब जो हम गुनाहगारों के लिए थी वो हमसे दूर हुई।
In chapters 8 to 11, we will see details about God's sovereignty in calling us to Himself.
और फिर हम बाब 8 से लेके 11 तक खुदा की हाकिमियत के मुतलक जानते हैं और फिर हम इसके मुतलक ये भी देखते हैं कि खुदा हमसे किस चीज का मुतालबा करता है।
And what it looks like to call upon the name of the Lord Jesus for salvation.
और फिर हम ये जानते हैं कि जिसे उसने निजात के लिए इस्तेमाल किया वो खुदा को क्या कहकर पुकारता है।
And in chapters 12 to 16, as Paul often does,
और 12 बाब से लेके 16 बाब तक पौलुस रसूल हमें ये बताता है इन चार बाब में अबवाब में कि किस तरह हमें उन चीजों से दूर रहना है।
With all that he's told us, he will talk about how we are to live it as Christians.
और फिर हमें वो एक मसीही होने के नाते ये दिखाता है ताकि हम ये जान सकें कि हमें मसीह होने के नाते क्या करने की जरूरत है।
And so we are still in, we're beginning chapter 2 today, we are still in a major talk on the gospel.
और आज जो हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से वो आज हमारे लिए बड़ा ही खुशकुन मौजू है।
And so, let's go to our text.
तो आइए आज खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं।
And that is going to be Romans chapter 2, verse 1. Therefore, thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest, for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself, for thou that judgest dost the same things.
और खुदा के कलाम में जो मरकूम है हम जावेद के साथ मिलकर खुदा के कलाम की तलावत करेंगे
जी पास से इल्जाम लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो तेरे पास कोई उजर नहीं क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्जाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है इसलिए कि तू जो इल्जाम लगाता है खुद वही काम करता है आमीन
Amen. Thank you. Whenever we consider sin,
और जब कभी भी हम गुनाह का ख्याल करते हैं,
sin anywhere in the world outside of ourselves,
और पूरी दुनिया में जो गुनाह है वो एक ना देखे जाने वाली चीज है हम उसे सिर्फ महसूस करते हैं कि ये गलत है
We are always to examine and look at ourselves.
और फिर हमारी हर वक्त ये कोशिश होती है कि हम गुनाह को सिर्फ दूसरों पर जाहिर करें और अपने आप पर जो है वो गुनाह का उजर ना लेके आए और अपने आप को गुनाहगार ना ठहराएं
No Christian speaks of anyone else being condemned
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी मसीह के पास ये इजाजत नहीं है कि वो दूसरों पर गुनाह को उछाले और अपने ऊपर गौर ना करे
Without knowing that they themselves would be condemned without Christ.
और हमें इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि मसीह के बगैर हम भी गुनाहगार हैं.
So as we finished Romans chapter 1 and all that talk about sin.
और जैसे ही हम रोमियों उसके एक बाब को मुकम्मल करेंगे और गुनाह के मुतल्लिक बातचीत को खत्म करेंगे.
It's supposed to show us all just how far sin can go in our lives.
और फिर हम ये दुरुस्त तौर पर जानेंगे कि हमारे अंदर वो कौन सी गलतियां हैं और वो कौन से गुनाह हैं जिन्हें हम मानने से इनकारी हैं.
So we understand that God's judgment is right toward us all.
और हम सबको ये भी पता है कि खुदा का जो अदालत और खुदा जो हमारा इंसाफ करेगा वो हर किसी के लिए है ना कि किसी एक के लिए
Whether we are Jew or Gentile.
और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम यहूदी हैं या यूनानी या फिर हम मसीही हैं क्योंकि हर एक का इंसाफ खुदा ने करना है
And so we understand that as we judge what is sin, we ourselves are judged by our sin.
और हमें इस बात के मुतलक ये बखूबी इलम होना चाहिए कि अगर हम दूसरों का इंसाफ करते हैं दूसरे के गुनाहों का तो फिर हमें अपने गुनाहों का भी इलम होना चाहिए और उनका भी हिसाब करना चाहिए
Paul is writing this letter mainly to Gentiles.
और पौलुस रसूल ने ये जो खत है वो खास तौर पर वहां के जेंटाइल के लिए लिखा
But this section would speak so clearly here to Jews who had the law of Moses.
लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ये कलाम सिर्फ उनके लिए ना था बल्कि ये कलाम उन यहूदियों की तरफ भी इशारा करता था जिनके पास मूसा की शरीयत थी.
And so as they who had the law judge those without the law, they were to judge themselves by the law.
और जिनके पास उस वक्त शरीयत थी उन्हें इस बात के लिए जरूरत थी कि वो शरीयत के मुताबिक अपना हिसाब करते और जिनके पास नहीं थी वो शरीयत के बगैर इस बात का अंदाजा करते कि वो गुनाहगार हैं
And as we see here, they would be inexcusable not to do so.
और यहां हम ये देखते हैं कि ये चीजें बगैर जवाब के हैं इनको करना
And let's read verse 2. But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things.
और खुदा के कलाम में दूसरी आयत में मरकूम है हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है. आमीन.
Both in this life and in the life to come, God is the only real judge of the law.
और हम ये जानते हैं कि ये जिंदगी और इसके बाद जो आने वाली जिंदगी है, उन दोनों जिंदगियों में खुदा ही इंसाफ करने वाला है और वो ही एक मुनसब है.
He has given his church many things to judge, but we know we are not the only or the judge.
और उसने हमें बहुत सी चीजों का इंसाफ करने के मुतलक जो है वो दुनिया में लाया है, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि दूसरों पर उंगलियां करने वाले हम जज नहीं हैं, जज तो सिर्फ खुदा है.
No one is to pretend in their life that they can sin and get away with it.
और कोई भी शख्स जो ये गुनाह करता है, उसे जरूरत है कि वो उस गुनाह पर गौर करे, ना कि उस गुनाह से खुद को दूर लेके जाए.
Even though we have covenant with God through Christ, the law, we are not to live hypocritically under the law.
जिनको खुदा के फजल के वसीला से ये नजात मिली है, उन्हें जरूरत नहीं है कि वो शरीयत के मुताबिक अपने आप को रखें और उस शरीयत के मुताबिक अपने अच्छे काम जाहिर करके खुद को मुनाफिक बनाए.
And so we always judge ourselves.
तो इसके लिए जरूरी है कि हम जो दूसरों पर उंगलियां करते हैं और उनको जज करते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों पर भी निगाह करें.
Israel had a unique problem with this throughout her history as a nation.
और इसराइल के अंदर भी ये बीमारी थी.
And so if you go and read, for example, the first chapter of the prophet Isaiah.
और अगर आप उनकी उस मसले के मुतलक जानना चाहते हैं, तो आप इसाया के पहले बाब को पढ़ें और वहां जो खराबियां हैं आपको उनके मुतलक नजर आएगा.
You'll read even in the first chapter where God says he does not want them to continue offering their false sacrifices.
और वहां हम देखते हैं कि वो अपने आप को जो है खुदा की कुर्बानियों के लिए तैयार ना रखना चाहते थे और वो मुनाफकाना तौर पर खुदा को अपना खुदा तसव्वुर करते थे.
And many of them were saying they loved the law, but they were openly denying it in their sin and rebellion.
और हम में से बहुत से उसे खुदा खुदा पुकारते हैं, लेकिन जब हम गुनाह करते हैं और उसके कामों से इनकारी करते हैं, तो दर हकीकत हम अपने आप को एक तरह का झूठा और मुनाफिक शख्स बनाते हैं और खुदा के सामने उससे दगा करते हैं.
And so God through Isaiah commands them to repent and to stop dishonoring the law, even though they knew the law, by their sinfulness.
और इस यशाया की किताब में खुदा बाप उनसे ये फरमाता है कि तुम जो शरीयत को सामने रखकर खुद को अच्छा और सच्चा जाहिर करते हो, जरूरत है कि तुम शरीयत को जो तो नहीं लेकिन खुदा के फजल को जानकर इन कामों से इनकारी करो.
And so it's the same for you and me today that we are to have the law and judge ourselves and others rightly by the law.
और आज हमें भी इस बात की जरूरत है कि हम अपने आप को शरीयत के मुताबिक ना रखें, बल्कि अब हमारी निजात हो चुकी है तो खुदा के उस फजल को याद रखें और अपने बुरे कामों से तौबा करें.
We as Christians have no excuse to continue in our sin.
और हम जो मसीह हैं, अगर हम गुनाह में चल रहे हैं, तो हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि गुनाह हमें मजबूर करता है, क्योंकि हम उसके फर्जंद हैं, उसके चुने हुए हैं.
And so we read here in verse 3, and thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God?
और खुदा के कलाम में तीसरी आयत में यह मरकूम है, ऐ इंसान तू जो उस ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वही काम करता है, क्या ये समझता है तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? आमीन।
And so Paul is going to remind them that it's not just those who hear the law who are blessed, but those who do the law.
और यहाँ पौलुस रसूल उनको इस बात की आगाही दे रहा है कि हम जो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, हमें अपने ऊपर भी गौर करने की जरूरत है।
And just like it is with us as Christians, we who have received grace, it's not just the hearing, it's the doing.
और हम जो मसीही हैं, हमें इस बात की जरूरत है कि ना सिर्फ खुदा के कलाम को सुने बल्कि उस पर अमल भी करें।
Reading on in verse 4, or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance?
और यहां खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, या तो उसकी मेहरबानी और तहम्मल और सबर की दौलत को ना चीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। आमीन।
It is God's goodness that led you and me to repent of our sins and to believe in the gospel.
और ये खुदा की मेहरबानी और अच्छाई है कि आप और मैं तौबा की तरफ माइल होते हैं, और जब हम कोई गुनाह करते हैं, हम उसके सामने तौबा करते हैं और खुदा हमारे अंदर काम करता है।
Paul is going to teach elsewhere how the law given to Moses was a teacher that brings us to Christ.
और हम इस बात को भी जानते हैं कि जो शरीयत है वो हमें जो है वो गुनाह के मुतालिक बताती है, और वो हमारा एक उस्ताद है जो मुख्तलिफ चीजों के मुतालिक हमें आगाही बख्शता है।
The law of Moses can take us to the cross, but it can take us no further.
और जो शरीयत है, जो मूसा की शरीयत है, ये हमें सलीब तक लेके जाती है, जो लेकिन जो सलीब से आगे का सफर है वो मसीह हमारे लिए तय करता है।
The law shows us that we needed a savior.
और शरीयत जो है वो हमें इस बात की निशानी दिलाती है कि हमें किसी निजात देने वाले की जरूरत है।
And so when the law judges you and you understand that, you understand that you are blessed and God has led you to repent.
और जब हम शरीयत के अंदर अपनी जिंदगी रखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि गुनाह क्या है और हमारी जिंदगी में गुनाह कौन सा है और हमें निजात दहिंदा की जरूरत है।
However, the law doesn't do this in everyone.
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमसे पहले नस्लों के लिए जो है वो तो शरीयत ने काम किया, लेकिन हर किसी के लिए शरीयत अब काम नहीं कर रही।
For some people, the law only hardens them further against God.
और बहुत से लोगों के लिए अगर वो शरीयत के अहकाम को मानते हैं तो उन्हें खुदा के अंदर रहकर जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल काम नजर आता है।
And so we read in verse 5, but after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and the revelation of the righteous judgment of God.
और अब हम पांचवी आयत तलावत करेंगे, बल्कि तू अपनी सख्ती गैर तायब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। आमीन।
God is a just judge. He judges no one wrongly.
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा एक सच्चा मुनसिफ और इंसाफ करने वाला है और वो किसी के साथ भी बेइंसाफी नहीं करता।
And so when it comes to the cross of Jesus Christ, I ask you,
Yes.
So when it comes to the cross of Jesus Christ, I ask you.
और जब वो मसीह की सलीब के नजदीक आता है, तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ.
Has the law hardened you toward God, or has it softened you toward God?
और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब सलीब के नजदीक आप पहुँचते हैं और अपने आप को रखते हैं, तो क्या शरीयत आपके दिल को सख्त करती है या फिर नरम करती है?
Does the law show you what the cross means to you, or are you trying to save yourself by keeping the law?
और सलीब हमें ये बताती है कि सलीब का काम क्या है और सलीब निजात का जरिया क्या है, या फिर उस वक्त भी आपको ये याद आता है कि आपको शरीयत के अहकाम मानकर खुदा की निजात को हासिल करना है.
Paul's going to deal with this a lot more in this letter, how many Jews were refusing Jesus by trying to keep the law.
और यहां पौलुस रसूल इस बात के मुतलक हमें आगाही दे रहा है कि किस तरह उस वक्त जो है वो बहुत से यहूदी शरीयत को मानते हुए गुनाहों में उस वक्त भी अपने आप को उन्होंने रखा हुआ था.
But the best purpose of the law, which the law is good, is to lead someone to the cross.
और शरीयत बड़ी अच्छी खुदा की किताब है और ये हमें सलीब की तरफ लेके जाती है और बताती है कि हमें किसी निजात दहिंदा की जरूरत है.
Because I understand verse 6.
क्योंकि मैं छठी आयत को समझता हूं.
That God will render to every man according to his deeds.
क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, छठी अगर हम छठी आयत की तलावत करें तो यहां लिखा है, वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा. आमीन.
The law has shown me just how much I need the righteousness of Jesus Christ.
और शरीयत हमें ये बताती है कि किस कदर ज्यादा सच्चाई की जरूरत हमें है ताकि हम खुदा के नजदीक रह सकें.
The same God who told me not to lie told me not to murder.
और वही खुदा है जो मुझे बताता है कि मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं और ना ही किसी का कत्ल करने की जरूरत है.
And so if I break any one part of it, I break all of the law.
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं उसके इन अहकामात के किसी एक हिस्से को भी तोड़ता हूं, तो गोया मैं उसके तमाम अहकामात को रद्द करता हूं.
Law keeping cannot save us.
और जो शरीयत है वो हमें गुनाह के मुतल्लक तो बताती है लेकिन बचाने की कुदरत नहीं रखती.
If it could, we would not need a savior.
और अगर हम अपने आप ही बचा लिए जाएंगे और अपने अमाल के जरिए से ही बचा लिए जाएंगे, तो फिर हमें निजात देने वाले की जरूरत क्यों थी और क्यों है?
In John chapter 16, Jesus says that God the Holy Spirit.
और यूहन्ना की अंजील में खुदा हमसे ये फरमाता है,
When he comes, would convict the world of sin, righteousness, and judgment to come.
और हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील में कि जब वो इस रूए जमीन पर आएगा, तो पहले तो उसने निजात का काम हमारे लिए किया, लेकिन जब वो फिर से आएगा, तो वो हमारी अदालत के लिए आएगा और हमारे इस सरजमीन पर इस जमीन पर रहते हुए जो हमारे अमाल हैं उनको देखेगा.
That is what the work of the Holy Spirit is in our lives. He convicts.
और ये जो कुदरत है हमें इन बातों की तरफ आगाही देता है ताकि हम जान सके कि खुदा हमसे किस चीज का तलबगार है.
Sin is exposed by the law. The judgment to come is exposed by the law, and that, when we understand it, shows that the Holy Spirit is at work in our lives.
और पहले खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारी रहनुमाई करते थे और अब हमारी जिंदगियों में रूह कुदस हमारा दूसरा मददगार है जो हमारी रहनुमाई करता है.
But not everybody understands this, and so we have Romans chapter 2 verses 1 to 6.
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूह कुदस रहनुमाई करता है लेकिन उनमें से हर कोई हम में से हर कोई रूह कुदस नहीं जानता.
So we who have been given the truth.
Yes.
So we who have been given the truth.
और हम जिनको सच्चाई की तालीम मिली है, सच विरासत में मिला है.
Are to judge by it and to live by it.
हम तो फिर हमें ये जरूरत है कि जिस तरह हमारा बाप सच्चा है, हम भी सच्चाई में जिंदगी बसर करें. और सच्चाई को ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं.
And we'll have to end there for time tonight, but we'll see how in the following verses we are shown to do that.
और जब हम इस पैगाम का इख्तिताम करेंगे तो फिर हम जानेंगे जो उससे पहले हमने आयात पढ़ी है वो किस बात की तरफ इशारा करती है.
But I ask you not to be like those who have no repentance. Don't be like them.
और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप उन लोगों की तरह ना बनें जिनके पास निजात नहीं है और जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की.
Instead, may the law in your life and in mine be like what a good doctor would tell you.
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मूसवाई शरीयत है, जो मूसा की शरीयत है, वो आपके अंदर एक अच्छे तबीब और डॉक्टर की तरह है जो आपको बताती है कि आपके अंदर गुनाह का मर्ज क्या है.
If you don't feel well, you go to a doctor and he or she diagnoses your condition, your sickness.
और आप इस बात का अंदाजा करें कि रूह कुदस एक डॉक्टर है जो आपके अंदर जब आप बीमार होते हैं तो आपको इस बात की तशखीस करती है कि आपके अंदर मसला क्या है, आपके अंदर कौन सी बीमारी है जिसके लिए आपको जो है वो इलाज करवाने की जरूरत है.
In the life of God's people, the law is like a good doctor, like a tool in the hand of God.
और फिर जो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी है वो हमारे लिए एक राहे हक और सच्चाई की जिंदगी है और राहे मशल है जो हमें उजाले की तरफ लेके जाती है.
It shows us what our sickness is.
और वो हमें बताती है कि हमारी कमजोरियां क्या हैं.
And then the cure is prescribed by the doctor.
और फिर जब हम इन चीजों को जान लेते हैं तो फिर जो हमारे अंदर एक तबीब है, जो डॉक्टर है, वो हमें इलाज की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है और हमें उस बीमारी के मुतलक एक दुआ बख्शता है जिसके वसीला से हम सेहतयाब होते हैं.
एंड सो जीसस सेज दोज़ हु हैव नो नीड ऑफ अ फिजिशियन और अ डॉक्टर दे नेवर गो टू द डॉक्टर.
और फिर हम खुदा के कलाम में से कई हवाला जात में से पढ़ते हैं कि जिनको कोई बीमारी नहीं उनको किसी तबीब की जरूरत नहीं और वही तबीब के पास जाता है जिसे कोई मर्ज हो.
But those who know that they're sick, they go to the doctor.
और जो बीमार है उसे तबीब की जरूरत है और जो बीमार नहीं है उसे तबीब की जरूरत नहीं.
May the law work that way in our lives so that we would come to the cure that is the cross. May it diagnose and show us our sin.
और जो मूसा की शरीयत है ये हमारा उस्ताद है और इसके अलावा एक डॉक्टर है जो हमें हमारे सबसे पहले हमारी बीमारी के बताता है और फिर हमें उस इलाज की तरफ लेके जाता है जो हमारे लिए इंतहाई जरूरी है.
And not be like those who could hear the law, but think themselves above it.
और ना ही ये हमसे इस बात का तकादा करता है कि हम उस शरीयत को पढ़ें और उससे बालातर अपने आप को समझें।
Those who live like that will not escape the judgment of God.
और जो कोई ये सोचते हैं वो खुदा के गजब से बचेंगे नहीं बल्कि उसके हवाले किए जाएंगे।
And the last thing that I'll say,
और आखिरी चीज जो मैं आपसे कहूंगा,
is that it is the promise of Jesus Christ that those who come to him,
और खुदा का ये वादा है कि जो कोई उसकी तरफ आता है,
will not come into judgment with God for their sin, but pass from death to life. That's our hope.
और जो कोई खुदा के नजदीक आता है, खुदा उसे उस अजाब से बचाता है, और खुदा उसे जिंदगी बख्शता है, और वो जिंदगी चंद दिनों की नहीं, बल्कि अबदी जिंदगी है।
And the Christian knows this because it's the goodness of God that led them to repent.
और जितने मसीही हैं वो इस बात से बखूबी आगाह हैं कि ये खुदा ही है जो हम पर तर्स दिखाकर हमें इस बात के मुतलक निशानदेही करवाता है कि हम बीमार हैं और हमें तबीब की जरूरत है और हमारा तबीब खुदावंद यीशु मसीह है।
So thank God for the law that led us to understand Jesus.
और हम खुदा के शरीयत के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं जिसने हमारी रहनुमाई मसीह तक की, जिसने बताया कि हमें हमारे गुनाहों से निजात की जरूरत है और फिर उस निजात के मुतलक जो निजात दहिंदा था उसके मुतलक भी हमें आगाह किया।
And we'll see a lot more about this, Lord willing, as we continue through Romans. Let us pray.
और हम और भी बहुत सी चीजें खुदा के कलाम में से सीखेंगे रोमियो की किताब में, अगर हम इसी तरह इसे बनाए रखेंगे। तो आइए आज के कलाम के लिए हम दुआ करेंगे।
Lord, I want to thank you for your word again this evening.
और खुदाए अज़ीम आज के तेरे उस कलाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं।
May we take all of it into our hearts and live to honor you according to it.
और खुदाए अज़ीम हम चाहते हैं कि आज जो हमने कलाम सुना है हम उसे अपनी जिंदगियों में रखें और उसके बाद अपनी जिंदगियों को इस कलाम के मुताबिक गुजार सकें।
We thank you for the blood of Jesus Christ that delivers us from sin.
और खुदाए अज़ीम हम खुदावंद यीशु मसीह के उस पाक लहू के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जिसने हमें हमारे गुनाहों से खलासी और रहाई बख्शी।
That Jesus honored the law that he himself had given on our behalf.
और हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि जो तूने अपना प्यारा बेटा हमारे लिए बख्श दिया, जो शरीयत का उस्ताद और जो शरीयत को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया।
So that we would not dishonor the law, but that we would understand the gospel according to it.
और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे उस बेटे के लिए क्योंकि उसके वसीला से हमने ये जाना है कि हमें शरीयत से अपने आप को दूर नहीं करना बल्कि हमें उस शरीयत को अपनी जिंदगियों में रखना है ताकि हम गुनाह के मुतलक जान सकें और फिर उस शरीयत के लिए जिसने हमें उस नजात दहिंदे के मुतलक बताया।
And so as we judge sin in others, let us always judge ourselves.
और हम तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं कि हम जो दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, हम जो दूसरों का इंसाफ करने की कोशिश करते हैं, हमें इस बात के मुतलक जानने की जरूरत है कि हम भी गुनहगार हैं और हमें अपने ऊपर भी निगाह करने की जरूरत है।
Because we know that you alone are the judge of all of us.
और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें इस बात के मुतलक आगाही दी कि हम ये जान सकें कि हम तो आम इंसान हैं और हम किसी के मुनसफ या इंसाफ करने वाले नहीं बल्कि हम सब का इंसाफ करने वाला तू अला ही खुदा है।
In Jesus name, amen.
और हम ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमेन।
Amen. Well, we started a little bit late tonight, so we only got through a few verses, but that's okay.
और आज हमने चूंकि इस कलाम का आगाज थोड़ी देर से किया और हमने खुदा के कलाम में से सिर्फ चंद आयात जो हैं वो सीखी हैं।
It was great to sing with you and to be with you tonight. I was especially blessed by the singing. Thank you.
और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ना सिर्फ मुझे कलाम का मौका बख्शा बल्कि दुआ में और आज की जो हमदो सना थी जो परस्तिश थी यकीनन मेरे लिए वो बाबरकत थी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस हमदो सना के वसीला से मैंने आज बरकत को रिसीव किया।
God hasn't given me the greatest voice to sing, so I hope I didn't ruin it on my end.
और खुदा ने मुझे भी एक अच्छी आवाज बख्शी है और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं भी आपके दरमियान कुछ गुनगुनाऊंगा।
But you have especially some ladies there that sing beautifully, and I was very much blessed.
और मैं शुक्रगुजार हूं उन बहनों का जिन्होंने आज बड़ी ही खूबसूरत हमदोसना की।
And so, Imran, I don't know, you said something about prayers for one of the gentlemen there. I don't want to take any more time. I know we started late, but what's next?
Okay, so thank you very much for today message and for this blessed message. And I want that you stop recording because I want that you pray for some break talents who want to join the work of God and want to do evangelism. But due to their poverty and due to their slavery on the Brickillians, they are still on the Brickillians, and we have to pray for them.
Yeah, absolutely. I'll do that now. I'll go ahead and stop any recording.